नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। एनएचपीसी ने कल देर रात से 2000 मेगावाट वाले सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की तीसरी यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले अरुणाचल की टीम को किया गया रवाना। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे अलग अलग स्पर्धा में करेंगे मुकाबला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को कम करने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका सैन्य अभियानों के लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत करीब। वैश्विक तेल बाजारों के स्थिर करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में फंसे तेल बेचने की अनुमति के साथ ईरान पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों में ढील करने की घोषणा की। रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद उल फित्र आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा और ओलावृष्टि के साथ तूफान की चेतावनी जारी की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। एनएचपीसी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी ने 20 मार्च की आधी रात से 2000 मेगावाट वाले सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की तीसरी यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे नेशनल ग्रिड में 250 मेगावाट हाइड्रो पावर जुड़ गया। इस यूनिट के शुरू होने के साथ ही प्रोजेक्ट ने अब कुल 750 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता हासिल कर ली है। कमर्शियल ऑपरेशन से पहले गत 27 फरवरी को यूनिट का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा गया था, जो परियोजना की प्रगति में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवसर पर एनएचपीसी के सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता ने परियोजना की टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहल शुरुआत एनएचपीसी की मजबूत तकनीक और विशेषज्ञता और भारत सरकार के टिकाऊ और आत्मनिर्भर बिजली क्षेत्र के विजन के अनुरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका को और मजबूत करती है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले अरुणाचल की टीम के लिए एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 77 एथलीट, 7 कोच और एक चीफ डिमिशन शामिल हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 आगामी 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। राज्य की टीम एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे अलग अलग स्पर्धाओं में मुकाबला करेंगे। इस अवसर पर राज्य के खेल और युवा मामलों के सचिव आबू तायंग ने CMACES पहल के महत्व पर प्रकाश डाला और पैरा एथलीट बिरिता कर और तिगोंग वांगपान की हाल की उपलब्धि का जिक्र करते हुए एथलीट्स का हौसला बढ़ाया। उन्होंने मिशन ओलंपिक और सरकार द्वारा सोचे गए सालाना राज्य खेलों जैसी अहम सरकारी पहलों पर भी बात की, जिनका मकसद खेलों को और बढ़ावा देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को कम करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि वे अपने सैन्य अभियानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब है। इस सप्ताह ईरान के महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र पर इसराइल के हमले के बाद ईरान ने कतर की दुनिया के सबसे बड़े LNG संयंत्र को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इस महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र में हमले से गैस और तेल की कीमतें बढ़ गई और डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य कार्रवाई कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसराइल ईरान के गैस क्षेत्र पर आगे कोई हमला नहीं करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने श्री ट्रंप के अनुरोध पर ईरान के अधिकांश बिजली की जरूरतें पूरे करने वाले गैस क्षेत्र पर हमले बंद करने की घोषणा की। अमेरिका ने 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की भी घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इस निर्णय का उद्देश्य पहले से उपलब्ध तेल आपूर्ति को जारी करके वैश्विक बाजारों को स्थिर करना है। इसराइल ने हिजबुल्लाह में से निपटने का सैन्य अभियान तेज करते हुए बेरूत पर फिर हवाई हमले किए। इसराइल पर सेना हिजबुल्लाह से जुड़े कमान केंद्रों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। संघर्ष में तेज होने के साथ ही लेबनान और मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि 7,60,000 से अधिक लोग विस्फोटित हो चुके हैं।
पश्चिम एशिया में बढ़ते हमलों और सैन्य तैनाती से मानवीय चिंताओं के साथ साथ तनाव भी तेजी से बढ़ रहा है। इसराइल ने बेरूत में हमले तेज कर दिए हैं, वहीं अमरीका पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस बीच ईरान के रुख में मिले जुले संकेत दिख रहे हैं। एक ओर वह कड़ी चेतावनियां दे रहा है और अपनी सैन्य गतिविधियों को विस्तार दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कूटनीति की बात भी कर रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों को शामिल करते हुए एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य बाहरी हस्तक्षेप के बिना शांति और स्थिरता बनाए रखना है। हालांकि ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में हमले जारी हैं, खाड़ी देश हाई अलर्ट पर हैं, हवाई खतरों को रोक रहे हैं और महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर खतरे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों के बीच भारत ने समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त उपायों से सरकार देश में निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अफरा तफरी की खरीदारी को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार से क्षमता से काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि ईंधन की कमी की कोई सूचना नहीं है, इसलिए नागरिक घबराहट में खरीदारी ना करें। मंत्रालय ने बताया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जिला उपायुक्त द्वारा जारी एक परिपत्र में जनहित में हेल्पलाइन नंबर 9862024299 जारी किया गया है, ताकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति को देखते हुए एलपीजी और पेट्रोलियम ऑयल एवं लुब्रिकेंट की आपूर्ति की निगरानी और नियंत्रण किया जा सके। इसके तहत आम जनता से अपील की गई है कि एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी, कालाबाजारी और कीमतों में हेराफेरी जैसी गतिविधियों की सूचना इस नंबर पर प्रदान करें। नागरिक व्हाट्सएप के जरिए फोटो और वीडियो भी साझा कर सकते हैं या icrdfcso@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला यह त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। उत्तर प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा में भी ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी नगर पालिका स्टेडियम में ईदगाह समिति द्वारा आयोजित नमाज में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं अगरतला के गेदू मियां मस्जिद समेत विभिन्न जिलों के ईदगाहों और मस्जिदों में भारी भीड़ देखी गई। इनके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ईद पर सामूहिक नमाज अदा की गई। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
लद्दाख के करगिल जिले में ईद उल फित्र धार्मिक श्रद्धा और सादगी के साथ मनाई जा रही है। हजारों लोग ईद की नमाज के लिए एक विशेष स्थान पर एकत्रित हुए। मुख्य सामूहिक नमाज इनकलाब मंजिल और हुसैनी पार्क में अदा की गई। बड़ी संख्या में नमाजियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और विश्व में शांति, एकता और सद्भाव के लिए दुआ की। इस अवसर पर लोगों को गरीबी और जरूरतमंदों को फितरा देते हुए भी देखा गया, जो ईद से जुड़ी एक विशेष परंपरा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ओलावृष्टि और गरज के साथ चमक और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले दो दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का भी अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों वेस्ट कमेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग, लेपारादा, ईस्ट सियांग, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनएचपीसी ने कल देर रात 2000 मेगावाट वाले सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की तीसरी यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले अरुणाचल की टीम को किया गया रवाना। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती जैसे अलग अलग स्पर्धा में करेंगे मुकाबला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को कम करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका सैन्य अभियानों के लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत करीब है। वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में फंसे तेल बेचने की अनुमति के साथ ईरान पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।